नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत, कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को अन्य बैंकों के जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत प्रतिबद्धता पूरी करने का निर्देश देने संबंधी खबरों का खंडन किया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपने अलावा अपने पति या पत्नी और आश्रितों की आय के स्रोतों की भी घोषणा करनी होगी। भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का अप्रैल में प्रक्षेपण। अमरीका ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के लिए रूस के 13 नागरिकों को दोषी ठहराया। और सेंचुरियन में भारत ने छठे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, श्रृंखला 5-1 से जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। भारत यात्रा पर आए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी। श्री रूहानी हैदराबाद में 2 दिन रुकने के बाद कल रात नई दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट।
ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। श्री रूहानी राजघाट भी जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वार्ता के दौरान श्री रूहानी और श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। दोनों नेता एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्री रूहानी से मुलाकात करेंगे। श्री रूहानी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। वह आज एक व्यापारिक कार्यक्रम और भारतीय पारसी समुदाय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को अन्य बैंकों को जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गारंटी पत्र के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा है। आरबीआई ने ऐसा कोई निर्देश देने से इंकार किया। उसने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का यह मामला बैंक के एक या अधिक कर्मचारियों की जालसाजी और आंतरिक नियंत्रण की नाकामी से संचालन संबंधी जोखिम के कारण हुआ। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक की नियंत्रण प्रणालियों का निरीक्षण किया है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। मीडिया की खबरों में कहा गया था कि आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी की कथित जालसाजी मामले में अन्य संबंधित बैंकों को 11,300 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपनी आय के साथ साथ पति या पत्नी और आश्रितों की आय के स्रोत भी बताने होंगे। न्यायमूर्ति जे चलमेश्वर और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने उम्मीदवारों के लिए न केवल संपत्ति बल्कि संपत्ति के स्रोत बताने को अनिवार्य बनाने का निर्देश जारी किया, ताकि यह सार्वजनिक हो सके कि संपत्ति वैध ढंग से अर्जित की गई है। एक गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामों से 26 लोकसभा सांसदों, 11 राज्यसभा सांसदों और 257 विधायकों की परिसंपत्ति में भारी बढ़ोतरी की बात सामने आई है। त्रिपुरा में 60 सदस्यों की विधानसभा की 59 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया था। 292 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चारीलाम निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रामेंद्र नारायण देव वर्मा के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुचारू मतदान संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
काकराबंद सालग्रह निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं मजलिसपुर विधानसभा सीट के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 19 सीटों पर 4 दलों के बीच और अन्य सीटों पर बहुपक्षीय मुकाबले हैं। निर्वाचन आयोग ने 25 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस और 19 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हैं। 12 लाख महिला मतदाताओं सहित करीब 25 लाख मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। समाचार कक्ष से जी सुब्रमण्यन की रिपोर्ट के साथ प्रियंका अरोड़ा।
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्र का 6वां सम्मेलन आज पटना में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी।
राष्ट्रमंडल के 52 देशों के प्रतिनिधि संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और सचिव भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना आए हुए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि
सतत विकास के लक्ष्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व की सरकारों ने जो अब लक्ष्य रखा है उसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका, उसमें विधायिका की या पार्लियामेंट की या विधायकों या सांसदों की क्या भूमिका होती है उस पर विमर्श करना ये इस सम्मेलन का मुख्य विषय है।
विधानसभा में आयोजित प्लेनरी सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधायिका और न्यायपालिका विषय पर मुख्य वक्ता होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत इस वर्ष अप्रैल में चंद्रमा पर अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 भेजेगा। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि इस पर करीब 8 अरब रूपये की लागत आएगी। एक रिपोर्ट।
चंद्रयान 2 चुनौतीपूर्ण मिशन है क्योंकि यह पहली बार अपने साथ एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर चंद्रमा पर ले जाएगा। 6 पहियों वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरकर आसपास चक्कर लगाएगा। रोवर पर लगे उपकरण चंद्रमा की सतह से आंकड़े भेजेंगे जो वहां की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। चंद्रयान 2 पूरी तरह देश में निर्मित मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से यदि अप्रैल में इसे नहीं भेजा सका तो इस वर्ष अक्टूबर तक इसे चंद्रमा पर भेजने का विकल्प रहेगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
अमेरिका ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए हस्तक्षेप के लिए रूस के 13 नागरिकों और 3 संस्थाओं को दोषी ठहराया है। इन पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सहायता करने और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की जीत की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। विशेष वकील रॉबर्ट म्यूलर ने रूसी नागरिकों और कंपनियों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि रूस ने गैर आधिकारिक रूप से चुनाव में हस्तक्षेप किया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडे 7 दिन की यात्रा पर आज शाम भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान, नवाचार, उच्च शिक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, अंतरिक्ष और कौशल विकास क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्र देश के जनजातीय क्षेत्रों में और 562 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलेगा। जनजातीय कार्य मंत्री ज्वाल ओराम ने अपने मंत्रालय के बजट प्रस्तावों के बारे में मीडिया से बातचीत में कहा कि 271 स्कूलों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें 190 काम कर चुके हैं। श्री ओराम ने कहा कि सरकार जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट में घोषणा की गई है कि 2022 तक कम से कम 20,000 की जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य विद्यालय होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय राजधानी के लाल किले में आज शाम 8वें रंगमंच ओलंपिक्स का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि भारत पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें 25,000 से अधिक विदेशी कलाकार हिस्सा लेंगे। 51 दिन चलने वाला ये राष्ट्रव्यापी रंगमंच उत्सव अहमदाबाद, भोपाल, पटना, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी और जम्मू सहित 17 शहरों में आयोजित होगा। महोत्सव का विषय है मैत्री ध्वज। कार्यक्रम 8 अप्रैल तक चलेगा। भारत ने 6ठे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 5-1 से जीत ली है। कल रात सेंचुरियन में भारत ने जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य 33वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 35वां शतक लगाया और अंत तक आउट नहीं हुए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 47वें ओवर में 204 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आज दूसरी वरीयता प्राप्त भारत के यूकी भांबरी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉमसन से होगा। कल सेमीफाइनल में भांबरी ने कोलिया के डुखिली को 7-5, 6-2 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल देश के विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान ने उनके इस बयान को दिया है कि अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। दैनिक जागरण ने मोदी के अहम मंत्र शीर्षक से बच्चों को दी गई इस सलाह को दिया है कि किसी के जैसा बनने की मत सोचो, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। राष्ट्र सहारा ने लिखा है 10 करोड़ विद्यार्थियों से रूबरू हुए मोदी, 6 लाख स्कूलों और 35,000 कॉलेजों में छात्रों ने सुने मोदी के टिप्स। जनसत्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री की पाठशाला में कामयाबी के गुरु मंत्र से अभिभूत हुआ छात्र। चुनाव आधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से दिया है कि देना होगा बाल बच्चों की आय के स्रोत का भी ब्यौरा। दैनिक जागरण का कहना है कि सांसदों विधायकों की संपत्ति की जांच के लिए स्थायी तंत्र बनाने की भी वकालत की गई है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा निलंबित करने को जनसत्ता सहित लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है नीरव से जुड़ी 150 मुखौटा कंपनियों की पहचान। अमर उजाला लिखता है कि नीरव और मेहुल के ठिकानों से 549 करोड़ के हीरे और सोना जब्त। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजस्थान पत्रिका ने तमिलनाडु को झटका और कर्नाटक को राहत बताया है। अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय के इस बयान को दिया है कि नदियां राष्ट्र संपत्ति हैं, कोई राज्य पानी पर पूरा हक नहीं जता सकता। दैनिक जागरण की यह खबर ध्यान खींचती है कि मुजफ्फरनगर में पुल के लिए मुस्लिम समुदाय ने हटाई मस्जिद। पत्र लिखता है कि ये उन लोगों के लिए एक मिसाल और सबक है जो विकास और जनहित के कामों को भी मजहबी सवाल से थाम देते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत करेंगे, बाद में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को अन्य बैंकों को जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत प्रतिबद्धता पूरी करने का निर्देश देने संबंधी खबरों का खंडन किया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपने अलावा अपने पति या पत्नी और आश्रितों की आय के स्रोतों की भी घोषणा करनी होगी। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का अप्रैल में प्रक्षेपण होगा। अमेरिका ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के लिए रूस के 13 नागरिकों को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।